पूरे नंबर के रजिस्टर में 115 पेज 8/4/88 का पहले क्लास रिकॉर्ड चला है। नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। बच्चों ने गीत सुना, भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नैन हीन बुद्धहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, राह बताओ। याद करते हैं अपने बाप को, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, जिसको याद करते हैं राह बताने के लिए। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। तो जहाँ भी जाएंगे जाकर के माथा टेकेंगे, जानते नहीं है कि वो कौन है और कब आए थे। ये न जानने के कारण बुद्धिहीन अंधों की औलाद अंधे कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे, कैसे राज लिया, कुछ भी पता नहीं। चलो भक्ति मार्ग वालों को तो कुछ पता नहीं कैसे राज लिया और कब आए, ज्ञानी बच्चों को तो पता होगा। लक्ष्मी नारायण कब आए, उन्होंने कैसे राज लिया, कब लिया है, संगमयुग में लिया। संगमयुग तो बहुत लंबा चौड़ा 100 साल का हो गया है। पुरुषोत्तम संगमयुग में राज लिया। पुरुषोत्तम संगमयुग कब से है, 76 से राज ले लिया। चलो भाई राम राज्य आ गया, सती विस्थापन हो गया। 76 से सती विस्थापन हो गया तो राज्य ले लिया। अच्छा, अपनी आत्मा का राज्य ले लिया, दुनिया का राज्य नहीं ले पाया। तो भक्त नहीं जानते हैं क्या कि कैसे राज्य लिया, कब लिया, कुछ भी पता नहीं है। तो पता है तो बताओ है? 76 में राज्य लिया तब तो राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य में तो कोई दुखी नहीं होता, रावण राज्य में सब दुखी होते हैं। नारायण के राज्य को तो बहुत सुखी राज्य माना जाता है, नारायण की तो कोई ग्लानी नहीं है शास्त्रों में, और दूसरे दूसरे देवताओं की तो ग्लानी दी हुई है। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है परंतु जानते नहीं है कि ये कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं परंतु कब आई, उसने क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर के माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके जाते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, चढ़ते हैं, कहाँ जाने के लिए, गौमुख पहाड़ पर जहाँ से गंगा उतरी, गंगोत्तरी में वहाँ गौ का मुख बनाई दिया है। वो तो भक्ति मार्ग की यादगार है, जड़ यादगार हैं, यादगार सब संगम युग की है। तो संगम युग में जरूर चैतन्य गऊ है कोई पहाड़ पर ऊंची स्टेज में, और बड़ी मेहनत करके जाना होता है, जाते भी हैं वहां, चढ़ते हैं उतरते हैं, सीढ़ी चढ़ना भी होता है और उतरना भी होता है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो गौमुख पर जाते हैं, पता कुछ भी नहीं है कि वहाँ क्या रखा है, गौमुख पर जाते हैं तो वहाँ क्या रखा होगा, गौमुख ही रखा होगा कि और कुछ रखा होगा। एक पत्थर की गऊ का मुख बनाया है, काय की गऊ, पत्थर की गऊ का मुख बनाया है। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है, अब जानवर के मुख से अमृत थोड़ा ही निकलता है, वो भी पत्थर का जानवर बना दिया। अमृत काय से निकलेगा, ज्ञान अमृत चैतन्य मनुष्य से निकलेगा या पत्थर के जानवर से निकलेगा। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी आर्कुटेशन को तो जानते ही नहीं, ये कब आए थे और आकर के इन्होंने किया क्या जो इनकी यादगार बनी हुई है। हम इनकी क्यों पूजा करते हैं, पूजा क्यों की जाती है, पूजा का आधार क्या, प्योरिटी, बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं हे प्रभु हे बाबा, क्योंकि वो सबका बाप है। मनुष्य के तीन बाप कहे जाते हैं, एक आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, और दूसरा सारी मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सिजरे का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, साकार मनुष्य सृष्टि का, और तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नैन ही इनको आकर राह बताओ, जो हमें सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुखधाम और सतयुग है सुखधाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है, जहाँ से फिर हम आते हैं पाठ बजाने, आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा की ये कर्मेंद्रियां मिलती हैं जिससे हम आत्मा कर्म करती हैं। आत्मा तो है इमॉर्टल और शरीर है विनाशी, आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान और शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है, बेहद की शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से नहीं मिल सकता। मनुष्य मात्र मन जो भी मनुष्य है, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, परमात्मा तो एक शिव ही है। कहते भी हैं शिव परमात्मा ही नमः, ब्रह्मा परमात्मा ही नमः नहीं कहेंगे, तो ये भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं है। सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? शिवलिंग के। मंदिर यादगार तो बने हुए हैं, लेकिन उन सेवा का धंधा क्या है वो धंधा नहीं जानते। अरे धंधा करने वाला तो चैतन्य में साकार होना चाहिए, इंद्रियों वाला होना चाहिए। शिव के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है, वो क्या धंधा रख करेगा? हैं? अच्छा चैतन्य, ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, तो जो ऊंच से ऊंच है फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है किससे? ब्रह्मा विष्णु शंकर से। शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। तो ये पहली अच्छी रीति समझानी चाहिए। कौन सी? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग, शंकर में और शिव में क्या भेद हुआ? शिव है आकारी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, ऊंची से ऊंची स्टेज वाला, और शिव है निराकारी। निराकारी अर्थात निसंकल्प, उसको कोई संकल्प विकल्प आदि करने की दरकार नहीं। शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, दिखाते हैं जटाओं से गंगा निकली, तो जटाएं तो मस्तक में होती है, मस्तक में से कोई ज्ञान की धारा थोड़े ही निकल सकती है। ये तो मनन चिंतन मंथन की बात है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज ही सूक्ष्म स्टेज है, सूक्ष्म वतनवासी की स्टेज। तो मनन चिंतन मंथन में तो संकल्प कुछ चलेगा, लेकिन ऊंची स्टेज का संकल्प, देह और देह की दुनिया के संकल्प नहीं होने चाहिए। वो है आकारी स्टेज। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, ये तो जैसे कि परमपिता परमात्मा को गाली दे देते। डिफेम करते हैं, इसमें डिफेम करना क्या हुआ? ये तो और ज्यादा महत्व की बात हो गई कि परमात्मा सर्वव्यापी है। माना इतना लंबा चौड़ा है, विस्तार वाला है कि चारों तरफ व्यापक है, तो इसमें डिफेम करना हुआ या उसका महिमा करना हुआ? महिमा करना हुआ। डिफेम करना कैसे हुआ? ग्लानिंग करना कैसे हुआ? तो पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, अगर सर्वव्यापी है फिर तो नरक में भी व्यापी है और स्वर्ग में भी व्यापी है, फिर उसको स्वर्ग रचने की क्या दरकार अलग से? नरक में व्यापी है तो जहाँ परमात्मा होगा वहाँ दुख होगा। जो भक्त लोग कहते हैं परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। परमात्मा तो सुखदाता कहा जाता है, और सुखदाता को टाइटल कोई दे दे दुखदाता का, तो डिफेम करना हुआ ना। तो पहले पहले बाप को जानना है, और कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पुरुषार्थ बाप की पहचान, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है उस बाप की पहचान। ऐसे नहीं ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बाप की पहचान हो गई, लेकिन ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता रचयिता नहीं है, वो स्वयं रचना है। तो जो बाप स्वर्ग का रचयिता है उसकी पहचान, मनुष्य तो ऐसे ही भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुखी सुख है और यहाँ तो सभी दुखी है। ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। तो बाबे समझाते हैं, अभी है भक्ति मार्ग, जो भी अंधियारे का बेविचारी मार्ग है, जैसे अंधियारे में दर दर ठोकरें खानी होती है, तो ऐसे दर दर जाकर के माथा टेकते रहते हैं। क्या माथा टेकना मन, बुद्धि को झुकाना, कभी किसी के सामने बुद्धि झुकाएंगे, हाँ तुम्हारी बात सही है, ऐसे ही होगा, फिर और दूसरी जगह पहुंचेंगे, हाँ ये भी बात सही है, ऐसे ही हो सकता है। तो जहाँ पहुंचेंगे वहां माथा झुकाते रहेंगे, क्यों? क्योंकि एक शब्द को पूरा नहीं पहचाना है, जब नहीं पहचाना है तो दर दर धो धो करें खाते रहते। तो हर जगह 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 जाकर के माथा टिकाना, तो माथा कैसा हो जाएगा? वो बुद्धि देविचारी कही जाएगी या देविचारी? देविचारी बुद्धि हो गई। जहाँ जाएंगे माथा टेकते रहेंगे। अब बाप कहते हैं जागो, दर दर माथा टेकने की दरकार नहीं है, परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं है, कि जो सामने आया उसी को परमात्मा मान करके माथा टेक दिया। ये कलयुग का अंत है। महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, क्योंकि भगवान जब आता है तो महाभारत लड़ाई भी सामने होती है। गीता का एपिसोड चल रहा है। एक महाभारत लड़ाई, एक गीता का ज्ञान और तीसरा भागवत। गीता ज्ञान जब सुनाया जाता है तो भागवत होती है, गोप गोपियां भाग खड़े होते हैं उस दुनियादारी को छोड़ छाड़ करके, और जब भागवत होती है जिनको छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, चाहे वो ब्राह्मणों की दुनिया हो पुरानी और चाहे वो लौकिक दुनिया हो पुरानी, जिस देह और देह के संबंधों की पुरानी दुनिया को छोड़ करके भाग खड़े होते हैं, तो छोड़ने वालों और जिनको छोड़ा गया है उनके बीच में युद्ध छन जाता है। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध कहा गया। तो गीता का कनेक्शन भागवत से है। क्या? गीता का कनेक्शन भागवत से है। गीता ज्ञान जब सुनाया जाता है तो गोप गोपियां दर दर धक्के जो खाते हैं, वो धक्का खाने से छोड़ करके भगवान के पास भागते हैं। गीता ज्ञान सुनने के लिए। और जब भागवत होती है तो महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध होता है। तो गीता का कनेक्शन भागवत से और भागवत का कनेक्शन महाभारत युद्ध से। तो अभी क्या क्या हुआ है प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में? गीता हुई है कि भागवत हुई है कि महाभारत हुआ है? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ? भागवत शुरू हुआ है, भागवत शुरू हुआ है, जैसे यज्ञ के आदि में शुरू हुआ था, अंतिम आहुति नहीं हुई थी। जो आदि में हुआ तो सब अंत में होता है। आदि में हुआ था लौकिक दुनिया के प्रति, और अंत में होगा ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया से शुरू होगा। विनाश ज्वाला ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई और सारी दुनिया को चपेट में ले बैठी। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो अभी ये महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी इसका प्रत्यक्ष रूप नहीं आया है, परोक्ष रूप में लड़ाई चल रही है। गीता का एपिसोड चल रहा है, क्योंकि महाभारी महाभारत गृह युद्ध के बीच में ही गीता सुनाई गई थी। लेकिन होता क्या है, गीता की तरफ लोग ध्यान उतना नहीं देते, गीता ज्ञान उतना इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे। और भागवत, भागवत बड़ा हुजूम का हुजूम इकट्ठा होकर के सुनेंगे। तो भागवत का महत्व जास्ती दे दिया है गैदरिंग। कहीं गीता का पाठ हो रहा हो, गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा हो तो थोड़े लोग इकट्ठे होंगे, और भागवत सुनने के लिए ढेर के ढेर भाग खड़े होते हैं। बड़ा बड़ा मजमा लग जाता है। अब गीता का भगवान तो एक ही बाप है। गीता के भगवान कोई 10-20 तो नहीं हो सकते। गीता के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला गीतापति भगवान तो एक ही है। गीता माता कही जाती है, भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ ही होता है शासन करने वाला। तो सर्वश्रेष्ठ शासन जो पवित्र होगा वो करेगा, या अपवित्र होगा वो करेगा? पवित्र ही तो सर्वश्रेष्ठ शासन करेगा। तो जो पवित्र है गीता माता, उसका पति गीता पति भगवान एक होगा या अनेक होंगे? गीता के ऊपर पूरी अथॉरिटी रखने वाला गीता पति भगवान तो एक ही होगा, जो एग्जैक्ट एक एक हिज्जे हिज्जे का अर्थ बताएगा। गीता के रोम रोम को जानने वाला एक ही बाप होगा, सब नहीं हो सकते। कृष्ण तो देवता था और कृष्ण तो बच्चा था, बच्चा कैसे गीता का भगवान बन जाएगा? बच्चा मानो बच्चा बुद्धि। ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान किसको बनाई दिया? कृष्ण को। कृष्ण तो सतगुण होगा, आप भी कहां से बनाई दिया? कृष्ण वाली सोल ब्रह्मा के रूप में, दादा लेखराज के रूप में जो आई पार्ट बजाया, तो उसी को उन्होंने क्या समझ लिया? गीता का भगवान समझ लिया। अब वो तो बच्चा बुद्धि था, माने परमात्मा ने उसके मुख का आधार लेकर के ज्ञान तो सुनाया, लेकिन उस ज्ञान की गहराई को वो आत्मा स्वयं भी समझने वाली नहीं थी, समझ नहीं सकती। समझाने वाला, क्लेरिफिकेशन देने वाला फिर भी परमात्मा बाप है, वो अलग। ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। ऊपर भी ये बात आई, क्या ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे? राधे कृष्ण सत्यु के प्रिंस प्रिंसेज हैं, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो सत्यु के जो प्रिंस प्रिंसेज हैं वो तो देवी देवता हो गए, उनको भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। और ये तो दुनिया ही पतित है, वैश्याल है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। दूसरा भी अब बाप सबको पावन बनाए रहे हैं। इन भारत माताओं द्वारा पावन बनाए रहे हैं, विदेशी माताओं द्वारा पावन बनाए रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कहा है? विदेशी माताओं में और भारत माताओं में क्या अंतर होता है? विदेशी माताएं तो झट तलाक देकर के दूसरा खत्म कर बैठती, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी सी आंख टेढ़ी हुई और उन्होंने तलाक दे दिया, डाइवोर्स दे दिया। और भारत की माताएं चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, लेकिन वो उस दर को छोड़ती नहीं है। तो इन भारत माताओं के द्वारा बाप सबको पावन बनाए रहे, जिनमें इतनी श्रद्धा विश्वास निश्चय पक्का है कि एक बार जिसे पति परमेश्वर स्वीकार कर लिया, जान करके अंधश्रद्धा पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक, अंधश्रद्धा तो होती है भक्ति मार्ग में। बात कहते हैं जो भी पति है वो सब परमेश्वर है, हर स्त्री का पति क्या हो गया? परमेश्वर हो गया। तो वो तो है अंधश्रद्धा। भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा ज्ञान मार्ग में होती नहीं। ज्ञान मार्ग में तो एक ही परमात्मा है और एक परमात्मा कोई सर्वव्यापी होता नहीं, वो तो एक व्यापी होकर के आता है। तो उस एक व्यापी परमात्मा को जो पति परमेश्वर पहचान लिया कि वो विश्व का पति भी है, विश्व का पिता भी है, तो फिर धरत परी है पर धर्म न छोड़िए। माना चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, ऐसी जिनकी अटल श्रद्धा है भारत माताओं की, उनके द्वारा स्वर्ग पावन दुनिया बनाए गए। इन माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। किन माताओं पर विशेषता क्या बताई? भारत माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है, विदेशी माताओं पर ज्ञान का कलश बाप नहीं रखते। भारत में पवित्र राज्य था और अभी है पवित्र राज्य, गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया। धारणाहीन हो गया है। फिर बाप आकर के पावन बनाते हैं, आकर के पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते हैं फिर बच्चे पावन बनाते रहते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, देहाभिमानियों से बाप बात भी नहीं करते। मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछुड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी कंगाल कौड़ी तुल्य बन गए। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। मेरे जैसा मन बन कैसे गए कौड़ी तुल्य, और मेरे जैसा बनना है ये कौन कहता है? मेरे जैसा मन किसके जैसा? बाप जैसा। बाप क्या है? कौड़ी तुल्य नहीं है, हीरे तुल्य है, है? बाप हीरो पार्ट बजाने वाला हीरा है या कौड़ी तुल्य है? वो तो हीरो पार्ट बजाने वाला हीरा है। हीरा तो लाइट मारता रहता है चाहे जहां भी रखा हो, धूल में भी पड़ा हुआ होगा तो भी लाइट मारेगा। तो तुमको अगर मेरे जैसा बनना है, हीरे जैसा बनना है, तो आप पुरुषार्थ करो। तो क्या पुरुषार्थ की तरफ इशारा दिया? कौन से पुरुषार्थ की तरफ इशारा दिया? आप व्यभिचारी बनो। व्यभिचारी विदेशी माताओं का रास्ता छोड़ दो, क्योंकि भारत वैश्यालय होता है विदेशियों के संसर्ग संपर्क में आने से। फिर भगवान आकर के भारत को शिवालय बनाते। तो ये भारत माता शिव शक्ति अवतार है। ये शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। ब्रह्मा के तन में बोल रहे हैं बैठे बैठे कि शिव बाबा को शक्तियां अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। बोलने वाला ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है तो उनसे क्यों कहा?
सर 116 पेज 8/4/88 का प्रातः क्लास, अर्थात दूसरे पेज का मध्य आदि। तो शिव की शक्तियां भारत माताएं, शक्ति अवतार जो कही जाती हैं, वो शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। कौन से शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है? जिनको शक्तियां अपना बाप मानती। तो बोलने वाला तो ब्रह्मा के तन में ही बैठा हुआ है, तो फिर इनसे कहना चाहिए या उनसे दूर कर देना चाहिए? उनसे इसलिए कहा कि ब्रह्मा के तन द्वारा वो परमात्मा पार्ट बजने वाला नहीं होता। वो परमात्मा पार्ट तो भविष्य की तरफ इशारा किया है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। किनसे? जिससे पांच विकारों पर जीत पहन माया जीते जगत जीत बनते। तो प्रैक्टिकली बनते होंगे या ये शरीर छोड़ करके अगले जन्म में बनते होंगे पुरुषार्थ करने वाले? माया जीते जगत जीत इसी जन्म में बने तब तो गायन पक्का होगा, पर उसे अंधश्रद्धा नहीं कहा जाएगा। नहीं तो फिर अंधश्रद्धा वाली बात हो गई। माया से हमने जीत पाई इस जन्म में और जगत जीत बने हम अगले जन्म में, तो दुनिया में इस बात का प्रूफ कोई मानेगा नहीं। ये है हार और जीत का खेल। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। किससे हार खाई? माया से हार खाई तो बादशाही गंवाई थी। भारत में प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो गया, राजाएं सब चौपट हो गए, राजाई खलास हो गई। सिर्फ भारत की बात नहीं, खास भारत में आम सारी दुनिया में राजाई चौपट हो गई। तो कैसे हार खाई? जो राजाई चली गई, माया से हार खाई। तो कैसे मिलेगी राजाई? माया के ऊपर जीत पहने तो राजाई मिल जाए। माया है पांच विकार, उनमें मुख्य विकार है काम विकार। तो काम के ऊपर जीत पाई, व्यभिचारी बुद्धि जो बन गई है, उस अव्यभिचारी बुद्धि को अव्यभिचारी अगर बना लिया, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। अगर ये बुद्धि बन गई तो माया से जीत निश्चित है। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो कि कैसे हमने हार खाई और कैसे हमने जीत पहनी, कैसे हम विश्व के मालिक बने और कैसे कौड़ी तुल्य कंगाल बने। बाप ईश्वर के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। पवित्रता होगी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, प्योरिटी नहीं होगी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी की दुनिया भी नहीं हो सकती। ये राजयोग है, हठ योग नहीं है। हठ योगी राजयोग नहीं सिखला सकते। कोई भी बात के लिए हठ पकड़ के बैठ जाना। बाप मुरली में कहते हैं मैं ही स्वर कर कहता हूँ, और कोई हठ पकड़ के बैठ जाए परमात्मा अकेला कैसे स्वर कर कहता होगा। परमात्मा स्वर क्यों रचेगा? स्वर्ग भोगना हमको है, रचेगा वो। हमको स्वर्ग भोगना है तो हम ही स्वर्ग रचेंगे। लेकिन परमात्मा बाप के बगैर, प्रैक्टिकल पार्ट के बगैर स्वर की रचना हो नहीं सकती। हाँ, बच्चे मददगार बन सकते हैं। जो जितना मददगार बनेगा परसेंटेज में, वो उतना बड़ा राजा बनेगा। तो अभी तुम बच्चों को मिलती है श्रीमत, भ्रष्ट लोगों की मत नहीं मिलती है। संगम युगी ही है जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है वो पहचाना जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी तो जरूर सत्य रूपी रंगमंच का हीरो ही होगा। तो उस हीरो को पहचान कर और हीरे जैसी मत लेने वाले जो होंगे वो ही श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने। रावण की मत माना 10 सिरों की मत। कभी एक सर से धक्का खाओ जाके, कभी दूसरे सर के पास धक्का खाओ, तो अनेक सर हैं, अनेक जगह माथा टकराता रहता है। तो उससे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी होता रहेगा। इससे तुम भ्रष्ट बन जाते हो। कहाँ बन जाते हो भ्रष्ट? 63 जन्मों में या ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में? ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में भी भ्रष्ट बनते हैं। यहीं शूटिंग होती है। यहाँ भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनने की शूटिंग न हो तो 63 जन्मों में और 21 जन्मों में भी ऐसा नहीं होगा। 21 जन्मों में कोई दास दासी न बने और 63 जन्मों में राजाएं महाराजाएं और दास दासी जो बनते हैं उसकी भी फाउंडेशन यहाँ पड़ती है। तो मूल कारण क्या बताया? भ्रष्ट बनने का और श्रेष्ठ बनने का। अब व्यभिचारी बनेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, और व्यभिचारी बनेंगे दर दर माथा टेकने वाले, बुद्धि को झुकाने वाले, तो क्या होगा? भ्रष्ट बनेंगे। तो भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी और कंगाल बना है। कारण बता दिया, रावण माना अनेकों शेर, अनेकों की मत पर चलने से दुखी और कंगाल बनता है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वो भी माता थी। हैं? वो भी क्यों लगा दिया? माताएं तो और भी थी, 9 देवियां गाई हुई है। लक्ष्मी भी माता कहा जाता है, सरस्वती भी माता कहा जाता है, काली को भी माता कहा जाता है। तो माताएं तो और भी थी, तो जगदम्बा भी माता थी। भारत के दुखी कंगाल बनने का कनेक्शन जगदम्बा से क्यों भेंट कर दिया है? भारत रावण की मत पर चलने से तो दुखी कंगाल बन गया, और उसके मुकाबले जगदम्बा की महिमा कर दी। क्यों कर दी? जरूर जगदम्बा भारत माताओं में कोई ऐसी माता है जिसने प्रैक्टिकल ऐसा पार्ट बजाया। एक बाप का बनकर कैसा पार्ट है? कि श्रीमत को पकड़ा तो भ्रष्ट मत कर नहीं चलना। वो भारत माता अभ्य विचारणी शिव शक्तियां वो ही भारत को स्वर्ग बनाती, और स्वर्ग अपनी मनमत पर नहीं बना सकती। कैसे बनाती है? श्रीमत पर स्वर्ग बनाती है, इसलिए उनकी इतनी महंगाई हुई है। ऐसे नहीं भगवान पढ़ाई पढ़ाई के चला जाए और फिर हम अपनी मत पर अपनी बुद्धि के आधार पर सुखधाम शांति धाम बनाते रहें ईंटों के और स्वर्ग बन जाएगा और महिमा हो जाएगी शक्तियों की। तो महिमा ऐसे नहीं होती है। पवित्रता के बगैर तुम कब पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। जब तक बुद्धि अभी विचारी नहीं बनी है, बुद्धि धक्के खा रही है इधर उधर, तब तक पवित्र दुनिया का मालिक कोई बन नहीं सकता। इस समय सबकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बुद्धि कैसी है? विपरीत। किसके विपरीत? बिंदु के विपरीत। अरे बिंदु से विपरीत बुद्धि और बिंदु से प्रीति बुद्धि का क्या मतलब हुआ? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बिंदी से ना विपरीत बुद्धि हो सकता कोई, ना प्रीति बुद्धि हो सकता। प्रीति और विपरीत बुद्धि कब कहा जाए? जब वो बिंदु साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कोई पर्सनालिटी हो तो कहा जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कौड़ी जैसा बनाई दिया। त्रेसठ जन्मों में तो बनाया, लेकिन अभी संगम युग में ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी ढेर के ढेर हैं जो कहते हैं हमारी मत पर चलो, हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे मुकाबले और कोई भी पर्सनालिटी इस दुनिया में नहीं है जो श्रेष्ठ हो। तो कितने भगवान हो गए? ढेर के ढेर भगवान हो गए श्रीमत देने वाले। दीदी दादी दादा हैं, जाने कितने कितने ढेर के ढेर। भगवान अलग से कोई चीज नहीं रहा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कौड़ी जैसा बनाई दिया। अब ये भक्ति मार्ग का भटकना खलास होना है। सत्युग में ये नहीं होता है, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर के समझो। क्या समझो? एक है साधे सब सद है। क्या एक की साधना की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक को पहचान कर और सब साधे सब जाए और सबकी साधना में लग गए, इसको भी खुश कर लें उसको भी खुश कर लें तो क्या होगा? ये तो वैश्या का धंधा होता है कि जो आया संसर्ग संपर्क में उसको खुश करने में लग जाती है। अब तो तुम बच्चों को श्रीमत मिली है। कौन सी मत? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिली हुई है, तो उन पर चलना चाहिए। जो श्रेष्ठ मत मिली हुई है, जिस श्रेष्ठ के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ के द्वारा, उसको पकड़ना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ ना कि मेरा तो एक बिंदी बाबा दूसरा न कोई। अरे बिंदी तो कीट पशु पक्षी पतंगे सभी बिंदी हैं, पता कैसे चलेगा कि कौन सी बिंदी शिव बाबा और कौन सी बिंदी कौन सा बाबा? और बिंदी तो बाबा होती भी नहीं है, बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। बिंदी बिंदी आत्माएं तो आपस में भाई भाई हो सकती हैं या फिर बाप हो सकती है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप अथवा उस बाप के बच्चे आपस में भाई भाई, दूसरा कोई संबंध बनता नहीं। तो मेरा तो एक शिव बाबा, ये बिंदु के लिए नहीं कहा गया, किसके लिए कहा गया? जरूर कोई साकार स्वरूपधारी है जिसके लिए ये कहा जाता है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसे नहीं मेरी तो एक बिंदी दूसरी न कोई। अब बिंदी बिंदी आत्मा है तो सब बिंदु एक जैसे, वो पैक्युलरिटी का पता कैसे चलेगा जब तक वो पार्ट न बजाए? तो परमात्मा पार्टधारी को प्रैक्टिकल में पहचानना पड़े। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, इन साधुओं आदि को भी पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं अजामिल जैसे पापियों गणिकाओं साधुओं आदि का उद्धार मैं करता हूं। साधुओं की गिनती किसने कर दी, किनके साथ इनको ज्वाइंट कर दिया? अजामिल और गणिकाओं के साथ साधुओं को भी ज्वाइंट कर दिया। क्यों? साधु तो पवित्र होते हैं, इंद्रियों को साधने की साधना करते हैं, उनको गणिकाओं वैश्याओं के साथ क्यों जोड़ दिया है? क्योंकि गणिकाएं और वैश्याएं उतना पाप नहीं करती जितना ये साधु बड़ा पाप करते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये सबसे बड़ा पाप। तो मैं इन साधुओं का भी आकर के उद्धार करता हूं। जैसे अजामिल का उद्धार करता हूं, अजामिल माना अजामाना बकरी और मिल माना मिले, बकरी के साथ मिल करके रहे। अरे भेड़ बकरी के साथ मिल करके रहे, शेरनी के साथ मिल करके नहीं रहता? बकरी का क्या स्वभाव होता है? जिसने गर्दन पकड़ ली बस उसी के कंट्रोल में आ गई। और शेरनी में क्या अंतर होता है? शेरनी ऐसा नहीं, बकरी कहाँ और कहाँ शेरनी, कहाँ शेरनी सचियां और कहाँ बकरियां। तो अजामिल जैसे जो होते हैं वो तो बकरियों को ही पसंद करते हैं, वो बकरियों से ही मिलते हैं, शेरनियों से उनकी पट नहीं सकती। तो वो हुए अजामिल। अजामिल था एक वैश्यावृत्ति करने वाला। तो बकरियां क्या हो गई, यहाँ माथा टेका वहां माथा टेका, इसकी बात मानी उसकी बात मानी, यहाँ धक्का खाया वहां धक्का खाया। धक्का खाना माना, धक्का किसे कहते हैं? अरे कहीं सत्संग में गए और वहां से लात लगी तो क्या हुआ? धक्का खाया ना, लतसंग हुआ सत्संग हुआ है? वो तो लतसंग हो गया, धक्का खा लिए, भक्ति मार्ग में है ही ठोकर। एक जगह सरेंडर हुए फिर वहां से धक्का मिल गया तो क्या कहेंगे उसे? हैं? लतभंग हो गया ना। तो अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करता हूँ। वो बेविचारी बकरियों से ही मिलकर के रहते हैं, क्योंकि शेर होगा तो शेरनी से मिलके रहेगा, और बकरा होगा तो बकरियों से मिलके रहेगा। और गणिकाओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। गणिका किसे कहते हैं? गणिका और वैश्या में क्या अंतर है? गणिका कहते हैं जो गीत गाती है भगवान के, ज्ञान सुनाएगी, भगवान की महिमा करेगी, लेकिन भगवान को जानती नहीं है, सिर्फ गीत गाएगी, महिमा करेगी और चलेगी दूसरों के अंदर में। क्या गीत गाएगी भगवान के, भगवान की महिमा करेगी, लेकिन बिना पहचाने, भगवान को जानती नहीं है। जब जानती नहीं है तो अंडर में किसके चलेगी? है जो गीत गाने वाले वैश्याओं के, वो गणिकाओं के साथ जो गीत गाने वाले, वाद्य बजाने वाले, जो संगीत के यंत्र हैं, वो बजाने वाले साथ में होते हैं ना, हाँ, वो कहेंगे, वो गीत गाएंगे, वो कहेंगे ता 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 धिन्ना, यानी हर बात में सुर मिलाए देंगे, बहुत अच्छी बात गई, बस देवियों की पूजा करते रहेंगे। तो हर बात में जो हमें हाँ मिलाए देते हैं सत्य वचन महाराज, तो क्या हो गए? गीत गाने वालियों के साथ ताल सुर मिलाने वाले, हाँ, लंपट कहते हैं उनको, बड़ुए। गणिका के साथ बड़ुए भी होते हैं, गीत वो जो वाद्य यंत्र होते हैं, हारमोनियम, तबला, सारंगी आदि बजाने वाले, हाँ, तो ऐसी गणिकाओं का भी मैं उद्धार करता हूँ, जो गीत गाती हैं भगवान के और चलती किसके साथ हैं? बड़ुओं के साथ। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कैसे? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, आधार मूर्तों की दुनिया में भी, तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे होता है। कैसे? गीत गाएंगी भगवान के और चलेंगी किनके साथ? साथ किनका निभाएंगी? बड़ुओं का। बड़ुए माना जो गीत गाने वाले के साथ वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, तबला, सारंगी, ढोल मजीरा। तो मैं उन साधुओं का, गणिकाओं का, अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ इन शक्तियों द्वारा। किन शक्तियों द्वारा? अव्यभिचारिणी शक्तियों द्वारा, बकरियों द्वारा नहीं, शेरनी शक्तियों द्वारा। तुम शक्तियां हो, शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी। किससे योग लगाने से? शिव बाबा से योग लगाने। योग माना, योग माना लगन, लगाओ। लगाओ तो इंद्रियों के द्वारा ही लगता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मन कहा जाता है, फिर नंबर वार और इंद्रियां भी हैं। इन शक्तियों द्वारा मैं उद्धार करता हूँ। उद्धार मन, जो बुद्धि नीचे गिरी हुई है सबकी, पतित हुई पड़ी है बुद्धि, उस बुद्धि को उत माने ऊपर, और हर माना हरण करके ले जाता हूँ। किनके द्वारा? इन शक्तियों के द्वारा। किन शक्तियों के द्वारा? जिनकी बुद्धि एक में लगी हुई है, और जो व्यभिचारिणी होंगी वो बाजार बुद्धि को ऊपर ले जाने के क्या करेंगी, और ही नीचे गिरा देंगे। तो तुमको योग लगाने से शक्ति मिलेगी, नहीं तो कब स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। जो शिव बाबा से योग नहीं लगाएंगे, पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, और कब मिलता है 21 जन्मों का वर्षा कब मिलता है, संगम युग पर। ऐसे नहीं कि सत्युग में वर्षा मिलेगा, सत्युग में तो वर्षा देने वाला होगा ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, अपना भी पुरुषार्थ करना है, और साथ साथ अपने बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर भी स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अभी तो सब आसुरी संप्रदाय, सत्युग में दैवी संप्रदाय है, ये राजयोग की पाठशाला है, किस योग की पाठशाला है, राजयोग, जिसमें राज भरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज भरा हुआ है जो राजयोग सीखने से विश्व के मालिक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। भगवान वाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अंतमति माने अंत में जैसी बुद्धि होगी वैसी प्राप्ति होगी। जैसी बुद्धि माना कैसी बुद्धि, अगर श्रेष्ठ के साथ बुद्धि योग रहा होगा जीवन में तो अंत मते सुगते, क्योंकि अंत में बुद्धि उसी श्रेष्ठ के साथ जाकर के जुट जाएगी। मनुष्य अपने जीवन में सारा जीवन जो कुछ याद करता है, मृत्यु के समय भी वही बात याद आती, जैसे कलयुग की दुनिया में, जैसे वैशाल्य की दुनिया में पुरुष याद करते हैं स्त्री को, सारा जीवन काम विकार छाया हुआ रहता है मस्तिष्क पर। तो पुरुष स्त्री चोलर को याद करेगा तो उसको कौन सा जन्म मिलेगा, स्त्री चोला ही मिल जाएगा। इसलिए गायन है वैश्यायोन मिले, अंतकाल जो स्त्री से मिले, क्यों कहा, क्योंकि सारा जीवन जो याद करता है वही बात वही स्वरूप अंत में जरूर याद आता है। स्त्री अगर सारा जीवन पुरुष को याद करती है तो अंत में उसे पुरुष चोला याद आ जाता है। तो पुरुष चोले में जो पेक्युलरिटी होती है वो पेक्युलरिटी याद जरूर आती है इंद्रियों के आधार पर, तो चोला कैसा मिलेगा, वो पुरुष चोला मिल जाएगा। तो यहां भी बताया, मेरे को याद करो अर्थात सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। क्या अंतमति सुगति हो जाएगी, बिंदु को याद करो तो क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे। वो तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं बिंदु हो जाती है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वो भी बिंदु हो जाते हैं, तो हमें विशेष प्राप्ति क्या हुई है? सिर्फ बिंदु बनना है क्या, स्वर्ग में नहीं जाना है क्या, स्वर्ग में भी तो जाना है हमें, हमें जीवन मुक्ति भी तो प्राप्त करनी है, तो फिर किसको याद करो है? सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाप माना कौन सा बाप, साकार नहीं, सिर्फ साकार को याद नहीं करना, साकार को भी याद करना नहीं करना, या निराकार को भी याद नहीं करना, आकारी को भी याद नहीं करना, फिर याद किसको करना, हाँ साकार में उस निराकार को याद करना हमारे हाई प्रवृत्ति मार्ग है, है ना, वो सूक्ष्म बतन वासी में तो शिव बाबा आता ही नहीं, ये तो रंग हो गया। सूक्ष्म बतन वासी तो पवित्र होता है, पवित्र फरिश्ते में थोड़े ही परमात्मा बाप आते हैं। तो परमात्मा बाप का जो प्रैक्टिकल रूप प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो साकारी में होगा या आकारी में होगा? साकारी में होगा। तो सिर्फ बाप को याद करो, सिर्फ बाप माना, जिसमें बेहद का बाप भी है, निराकार आत्माओं का बाप, और फिर दूसरा बेहद का बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो ये डबल बाप को याद करो, दोनों ही बाप हैं, है एक ही रूप, पर्सनालिटी एक ही है, व्यक्तित्व तो एक ही है। अब व्यक्त आत्माएं दो हैं, लेकिन व्यक्त व्यक्त स्वरूप एक है, व्यक्ति एक है। तो सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। माना जैसे बाप का स्वरूप वही स्वरूप हमको प्राप्त होगा, जो बाप की गति होगी वही हमारी गति होगी। तो कौन से बाप को फिर फॉलो करने की बात हुई? सिर्फ बिंदु बाप को। साकार में निराकार बाप को याद करेंगे तो मुक्ति भी मिलेगी और जीवन मुक्ति भी मिलेगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे हैं? लेकिन शर्त क्या बताई? सिर्फ मुझ बाप को याद करो, माम एकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करेंगे। माम एकम याद नहीं किया, कोई दूजम भी याद किया तो क्या होगा? तो वो दूजम की गति को प्राप्त हो जाएंगे। दूजम माना मानो कृष्ण की सोल को किसी ने याद किया, ब्रह्मा को कोई जिंदगी भर याद करता रहा, तो संगम युग का जो 21वें जन्म का स्वर्ग है उसकी प्राप्ति करेगा या 20 जन्मों की प्राप्ति करेगा? कृष्ण के साथ जाकर के जन्म लेगा या कृष्ण के माँ बाप जो बनने वाले हैं उनके साथ जाकर जन्म लेगा? तो फिर अंतर पड़ गया ना। माँ में कम याद करो, कोई दूजम याद ना करो। अगर दूजम को याद किया तो दूजम की गति, और तीजम को याद किया माना तीसरे नारायण को याद किया जो सत्युग का तीसरे नारायण बनने वाला है बौद्ध धर्म की आधार मूर्त आत्मा, तो कौन सी गति को प्राप्त करेंगे? बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। तो यहाँ तो एकम दूजम तीजम चौथम पांचम 500 करोड़म है। अब चाहे जिसको याद करो, जिसको याद करोगे वैसी गति तुम्हारी बन जाएगी। सत्युग त्रेता में ये भक्ति याद होती नहीं है, वहां तो 21 जन्म था सुख। अब बाप कहते हैं श्रावण पर जीत पहनो, विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। क्या कहा? एम ऑब्जेक्ट हर काम में देखा जाता है, कोई भी कार्य किया जाए उसका लक्ष्य क्या है कार्य करने का, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आए। मान लो सुल्ताना डाकू था, डकैती डालता था, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य क्या था? है? हाँ, उसका जीवन का लक्ष्य था कि जितने भी ये अमीर लोग हैं जो गरीबों के ऊपर हावी हुए पड़े हैं,
उनकी धन संपत्ति लेकर के और गरीबों को बांटना, तो उसका पाप बना या पुण्य बना? अच्छा,